जगत के अन्य विषयों के बारे में चर्चा करने लगेगी। तो इसे कहते हैं असती जिह्वा, अर्थात वो जिह्वा जो वैश्या के समान हो। जिह्वा का सदुपयोग होता तब है जब जिह्वा को भगवान की कथाओं में लगाया जाए, और यदि जिह्वा का प्रयोग किसी अन्य विषय वस्तु के कीर्तन में लगाते हैं तो उस जिह्वा को कहते हैं असती। तो मैत्रेय मुनि बड़ी नम्रता पूर्वक इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े कोई कथाकार वगैरह नहीं है, उन्हें बहुत अधिक स्मरण शक्ति नहीं है, वो बहुत बड़े साक्षात्कारी पुरुष नहीं है। वो कह रहे हैं विदुर जी को, मैं ये भागवत की कथा इसलिए कर रहा हूं जिससे मेरी जिह्वा भगवान की सेवा में लगी रहे, अन्यथा इस जिह्वा को लेकर मैं भौतिक विषयों के बारे में चर्चा करूंगा और मेरी जिह्वा असती या वैश्या के समान हो जाएगी। इसीलिए हम अपने जिह्वा का सदुपयोग भागवत कथा करके कर सकते हैं और अपने कानों का प्रयोग श्रीमद् भागवत के श्रवण में लगा सकते हैं। बिले बटोरु क्रम विक्रमान्य न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जिह्वासति दार्दुरिके वसुता न चोप गायति उरुगाय गाथा। जो व्यक्ति अपने कानों को भगवान की हरि कथा में नहीं लगाता तो उनके ये दो कान सर्प के बिल के समान है और कुछ नहीं। बिले बटोरुक्रम विक्रमान्य न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। तो यदि हम अपने कानों को भगवान की कथाओं में नहीं लगाएंगे, हमारा मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में एकाग्र नहीं होगा, तो ये दो कान वास्तव में सर्प के बिल के समान है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को दूसरे स्कंद के आरंभ में ही ये बात बताते हैं, जिह्वा सती दार्दुरी केव सूत न चोप गायति उरगाय गाथा। और इस जिह्वा को हम भगवान की सेवा में न लगाएं, उनके कीर्तन में न लगाएं, उनकी हरि कथा की स्तुति में न लगाएं, तो ये जिह्वा, फिर उसी शब्द का प्रयोग करते हैं, असती अर्थात वैश्या के समान है, न चोप गायति उरगाय गाथा। ये जिह्वा एक मेंढक की जिह्वा के समान है। मेंढक की जिह्वा बहुत लंबी होती है और वो मुंह के बहुत बाहर निकल जाती है, और मेंढक को अपनी जिह्वा का बड़ा गर्व होता है, लेकिन उस जिह्वा का कोई उपयोग नहीं। उस जिह्वा से मेंढक केवल छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पकड़ पाता है। मेंढक प्रयास भी करे तो उस जिह्वा से भगवान का नाम या उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। इसीलिए जिह्वा सती दार्दुरी केव सूत, यदि इस जिह्वा का प्रयोग हम भगवान की कथा में नहीं लगाएंगे न चोप गायति उरगाय गाथा। इसीलिए कानों की परिपूर्णता है भगवान की हरि कथा में एकाग्र होना, और हमारे जिह्वा की परिपूर्णता है श्री श्री राधा और कृष्ण की दिव्य लीलाओं की स्तुति करना। तो कल के प्रसंग में हमने ये देखा कि किस प्रकार परीक्षित महाराज के ऊपर ब्रह्म श्राप लगा, ब्रह्म तेज से प्रभावित होकर श्रृंगी परीक्षित महाराज जैसे महान भक्त पर बिना सोचे समझे इतने भयंकर श्राप को छोड़ देता है। 7 दिन और 7 रात में परीक्षित महाराज की मृत्यु होनी है। परीक्षित महाराज के पास अपने जीवन में काफी सारी बातें थी, लेकिन उन सभी को छोड़कर परीक्षित महाराज ने गंगा के तट पर एकाग्र मन के साथ महान ऋषियों का संग करने का निश्चय किया। परीक्षित महाराज वहां बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे। 14 लोकों से अलग अलग ऋषि मुनि आए, सभी ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए कि परीक्षित महाराज को अपने जीवन के अंतिम क्षण में क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी उन सभी के मेलजोल से कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला। जब सारे ऋषिगण इस तरह परेशान थे, उनके बीच व्यास पुत्र महान ऋषि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज का आगमन हुआ। और कल हमने सुखदेव गोस्वामी महाराज के सौंदर्य का वर्णन किया। सुखदेव गोस्वामी महाराज के आते ही सारे देवऋषि राजऋषि ब्रह्म ऋषि अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए, क्योंकि वो सभी सामुद्रिक विज्ञान में बड़े पटु थे और वे समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये भगवान के महान भक्त हैं और ये उपयुक्त होगा कि यही परीक्षित महाराज के अंतिम क्षणों में उन्हें मार्गदर्शन दें। और परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किए कि जीवन के अंतिम क्षण में व्यक्ति को क्या श्रवण, क्या कीर्तन, क्या स्मरण और क्या कर्तव्य निभाना चाहिए। ऐसा कहके परीक्षित महाराज शांत हो गए और सुखदेव गोस्वामी महाराज ने अपनी कथा आरंभ की। सुखदेव गोस्वामी महाराज ने सबसे पहले कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह सुखदेव गोस्वामी महाराज के मुख कमलों से श्रीमद् भागवत के सुंदर श्लोक प्रवाहित होने आरंभ हो गए। सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी महाराज ने परीक्षित महाराज को इतने सुंदर और इतने मधुर प्रश्न करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सर्वतः पुंसः श्रोतव्यादिषु यत्पर। सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी महाराज ने परीक्षित महाराज से कहा, वर्यानेशते प्रश्न, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने। क्यों? कृतो लोक हितम नर, ऐसे प्रश्नों से प्रत्येक व्यक्ति का भला होता है। आत्मवित सम्मतः पुंस, इन प्रश्नों के उत्तर से व्यक्ति अपने आत्मा की असली परिस्थिति को जान पाता है। हम समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा का क्या कर्तव्य है। आत्मवित सर्वतः पुंस श्रोतव्यादिषु यत् परः। और वैसे प्रश्नों के अलग अलग विषय वस्तु हो सकते हैं, लेकिन आपने इन सभी विषयों को त्याग कर केवल भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया है, ये आपने बहुत अच्छा किया। आपने ये प्रश्न किया कि जीवन के अंतिम समय में मनुष्य का क्या लक्ष्य होना चाहिए, मृत्यु यदि एक क्षण बाद आए तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस जीवन में तथा देहांत के पश्चात अगले जीवन में मनुष्य का कर्तव्य क्या है। इन प्रश्नों से अधिक उत्तम और कोई प्रश्न नहीं मिल सकते। उसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रश अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। वो कहने लगे कि वास्तव में देखा जाए चर्चा के अनेकानेक विषय हैं, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र, और भौतिक जगत में लोग इन सभी भौतिक विषयों में ही अधिक रुचि रखते हैं। नृणाम संति सहस्रश, सहस्र सहस्र विषय हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, दिन रात इन विषयों पर चर्चा हो रही है। और इसका प्रमाण क्या है? विश्व भर में बड़े बड़े लाइब्रेरियों में किताबें छप के पड़ी हुई हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें ऐसे ऐसे विषयों पर जो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने लिखी है, और इतने सारे न्यूज़पेपर, इतने सारे टेलीविजन में कार्यक्रम, इतने सारे रेडियो में कार्यक्रम चलते रहते हैं जो केवल भौतिक शब्द ध्वनि का प्रचार करती हैं और पूरे ब्रह्मांड के स्थान को दूषित करती हैं। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र, आप चाहे तो इन किसी भी विषय के बारे में पूछ सकते थे। परीक्षित महाराज तो इतने शक्तिशाली राजा थे, पूरे विश्व की सबसे अधिक शक्तिशाली सेना उनके पास थी, उनके पास चाहे तो ब्रह्मास्त्र भी था, न्यूक्लियर पावर भी था, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि तक्षक के ऊपर अपन न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे। वो समझ गए न्यूक्लियर बॉम्ब तो हमारे पास है, लेकिन जब मृत्यु आएगी, जब तक्षक आएगा, तो फिर हो सकता है तक्षक को ये मार दे, लेकिन आज नहीं तो कल मृत्यु तो आनी है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से ये नहीं पूछा कि आपकी राय में इस तक्षक का क्या किया जाए। वो ये पूछ सकते थे तक्षक को किस तरह वश में लाया जाए या तक्षक के विष को कैसे दूर किया जाए, ये भी उनके द्वारा प्रश्न किया जा सकता था, ये भी उपयुक्त प्रश्न होता। लेकिन परीक्षित महाराज जानते थे कि इस तरह की बातों में अधिक तथ्य नहीं है, क्योंकि अंततः मृत्यु तो व्यक्ति को झेलनी ही है। अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी बताए, लोग अपने जीवन में मृत्यु को आता हुआ नहीं देख पाते, इसीलिए अपनी ही दुनिया में उलझे रहते हैं। तो फिर आगे कहते हैं, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्तं निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के पहले कुछ श्लोक जो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज से वर्णन करते हैं, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, और यदि इन श्लोकों के तात्पर्य को ठीक तरह से समझा जाए तो श्रीमद् भागवत के आगे के स्कंदों को हम भली भांति समझ पाएंगे। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, देहापत्य कलत्र आदिशु। हे परीक्षित महाराज, आप बड़े बुद्धिमान हैं कि अपनी सेना, अपने परिवार, अपने घोड़े, अपने नौकर, अपने चाकर, अपने हाथी, अस्त्र शस्त्र सब कुछ छोड़कर यहाँ गंगा के किनारे आ गए, निहत्थे आ गए। आप बहुत बुद्धिमान हो। क्यों? क्योंकि आम व्यक्ति भौतिक जगत में क्या विचार करता है? देह अपत्य कलत्र, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरे परिवार के सदस्य, मेरे बच्चे, मेरी सत्ता इत्यादि मेरी रक्षा करने में सक्षम हैं, और इसे कहते हैं माया, इसे कहते हैं भ्रम। आत्मसैन्येषु असत्सु अपि, ये ऐसी सेना है जो असत है, अर्थात समय के साथ ये टिकेगी नहीं, क्योंकि काल के बाण एक एक करके इस सेना के प्रत्येक सैनिक की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आत्मसैन्येषु असत्सु अपि, किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं शरीर के बाहुबल पर अपने जीवन की अवधि को बढ़ा सकता हूं, कब तक चलेगा। हमने देखा है कि हमारे पूर्वजों की मृत्यु हुई है, उनके पूर्वजों की मृत्यु हुई है, परिवार में उनके फोटोग्राफ भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि शायद मेरी मृत्यु नहीं होगी। इसे कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य। न्यूज़पेपर में हम रोज पढ़ते हैं कि कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, फिर भी कभी कभी मन में एकाएक विचार आता है कि शायद मेरे जीवन में ऐसा नहीं होगा, मुझे छोड़कर शायद बाकी सब के साथ ऐसा हुआ, शायद मेरा स्पेशल केस होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। तेषां प्रमत्तम निधनम पश्यन् अपि न पश्यति, देखते हुए भी देख नहीं पाते कि जीवन के असली सत्य की क्या बात है। जीवन का सत्य ये है कि एक दिन मृत्यु आनी ही है, और श्रीमद् भागवत का संपूर्ण आधार इस प्रश्न के चारों ओर मंडरा रहा है, मृत्यु क्या है और मृत्यु की परीक्षा का सामना किस तरह किया जाए, और यदि आप जीवन के अंत में मृत्यु जैसे कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हो तो जीवन भर हर क्षण में उसके लिए तैयारी करना अभी से आरंभ करो। यह है श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु। इसीलिए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेतता भयम्। आपने प्रश्न किया कि मुझे जीवन भर किस तरह के कार्यों में अपना मन एकाग्र करना चाहता है, तो प्रिय परीक्षित महाराज उसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। भगवान कृष्ण जो कि सर्वोच्च नियंत्रक हैं, ईश्वर हैं और हरि हैं, अर्थात सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। श्रोतव्य, ऐसे भगवान के विषय में श्रवण कीजिए। कीर्तितव्यश्च, ऐसे भगवान के विषय में कीर्तन कीजिए। स्मर्तव्यश्चेतता अभयम्, और कृष्ण भगवान का स्मरण कीजिए सतत, प्रत्येक क्षण जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे आप कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास हो, चाहे आप प्रचारक हो, बिजनेसमैन हो, लॉयर हो, गृहिणी हो, या स्कूल में पढ़ते हुए कोई बच्चे हो, हर क्षण कृष्ण भगवान का नाम, भगवान की लीलाओं का स्मरण नित्य रहे। यही जीवन का असली लक्ष्य है, यही जीवन की परिपूर्णता है और कुछ नहीं। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेतता अभयम्। और यदि इस तरह भगवान श्री कृष्ण के विषय में हर क्षण हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, अपनी प्रत्येक इंद्रिय को भगवान के चरण कमलों में लगा सकते हैं, तो भय कैसा। भय आपन्न संस्मृतिं घोराम यन्नाम विवशग्रणन जन सद्यो वियुज्येत यद् विभेति स्वयं भयम्। भगवान श्री कृष्ण तो इतने शक्तिशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण को देखकर यद् विभेति स्वयं भयम्, भय मूर्तिमान भय भगवान को देखकर कांपने लगता है। जब हम भयभीत होते हैं तो हमारे रोमांच खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकलता, और ऐसे कई लक्षण दिख पड़ते हैं लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण भय के सामने खड़े होते हैं तो मूर्तिमान भय भयभीत हो जाता है। यत विभेति स्वयं भयम्। तो इसीलिए श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेतता अभयम्। निर्भय होने का इन 14 लोकों में दूसरा कोई उपाय नहीं। आजकल इंश्योरेंस पॉलिसीज काफी चल रही हैं, काफी प्रचलित हैं और भारी मात्रा में इनकी बिक्री हो रही है और उनका भी प्रचार कुछ ऐसा ही है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसीलिए सुरक्षा का कोई उपाय बनाओ। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी से किसकी सुरक्षा होती है? परिवार के दूसरे सदस्यों की। जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है इंश्योरेंस पॉलिसी उसे तो मृत्यु से नहीं बचा सकती। इसीलिए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी असली इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेतता अभयम्। जीवन के हर क्षण में, हर परिस्थिति में, सुख दुख में आप केवल भगवान श्री कृष्ण के विषय में सोचिए, स्मरण कीजिए, कीर्तन कीजिए और श्रवण कीजिए। क्यों? क्योंकि जीवन भर इस तरह का आपका प्रयास रहेगा तो क्या होगा? एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इस तरह आपका प्रयास रहेगा तो भगवान आपके इस प्रयास से बहुत संतुष्ट होंगे। और फिर जो सांख्य योगी हैं, जो कर्म कांडी हैं, जो अपनी बुद्धि के प्रयास से ज्ञान योग का पालन कर रहे हैं और जो अष्टांग योगी हैं, इन सभी ने मिलकर इस बात का निष्कर्ष निकाला है कि जीवन की सफलता इसमें है, अंते नारायण स्मृति, कि जीवन के अंत में यदि हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में सोच सकें, जन्म लाभ परह पुंसाम, इसे कहते हैं जन्म लाभ, तब हम कह सकते हैं कि मेरा जन्म सफल हुआ, मेरा जीवन सफल हुआ। जीवन की सफलता का ये अर्थ है अंते नारायण स्मृति। तो उदाहरण दिया जाता है कि यदि कोई उद्योगपति कंपनी खोलता है और कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट निकालता है और कहता है कि आप हमारी कंपनी में पैसे डालिए और हम आपको गारंटी देते हैं कि एक साल में हमारी कंपनी चौपट हो जाएगी, लेकिन आप अपने जीवन की पूंजी हमारी बढ़िया कंपनी में डालिए, देखिए कितना अच्छा नाम है हमारी कंपनी का, सुंदर नाम हमने कंपनी का दिया है, लेकिन हमें खेद है कि एक साल में कंपनी चौपट हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, बंद पड़ जाएगी और आपका सारा पैसा छू हो जाएगा, लेकिन पैसे डालिए ना। तो कितने लोग ऐसी कंपनी में अपना पैसा डालेंगे? सब दूर भागेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे उपस्थित लोगों में कितनों को शक है कि ये भौतिक शरीर रूपी कंपनी चौपट होने वाली है कि नहीं, लेकिन हमारा सारा इन्वेस्टमेंट केवल इस शरीर के अंदर ही है। जीवन भर पाई पाई, पग पग पर हम केवल इस शरीर के अंदर ही अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? बुद्धिमान उद्योगपति तो भविष्य की सोचता है। जो उद्योगपति भविष्य की न सोचे वो बुद्धिमान कैसा? तो बिजनेस में सब लोग कहते हैं ना, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, भविष्य के बारे में हम सोच रहे हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो आध्यात्मवादी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है, क्योंकि वो भविष्य के विषय में सोचता है। छोटे बच्चे को कहो कि बेटा कल के दिन तुम बड़ा होगा, तो कहता नहीं, मैं बड़ा नहीं होने वाला हूं, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। तो क्या ये बुद्धिमानी की बात है? नहीं। उसके माता पिता जानते हैं कि हाँ, कल के दिन ये बड़ा होगा, इसके उत्तरदायित्व होंगे, तो चलो बेटा स्कूल में जाओ। वो कहेगा स्कूल में बड़े परेशान होता हूँ, टीचर है छड़ी लेकर डंडा मारती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, घर में बैठकर मैं गिल्ली डंडा खेलता हूँ, ज्यादा आनंद आएगा। तो आप सोचिए, जो बच्चा अपने कंधे पर 15-20 किलो की किताबें उठाकर स्कूल जा रहा है और एक बच्चा घर में बैठ के गिल्ली डंडा खेल रहा है, कौन ज्यादा सुखी है? कौन सुखी है? जो घर में बैठकर लट्टू खेल रहा है, गिल्ली डंडा खेल रहा है, वो सुखी है? या जो अपने कंधे पर इतनी भारी भरकम किताबों को लेकर, आजकल तो किताबें इतनी मोटी होती हैं बच्चों की, बच्चों से भी अधिक वजन किताबों की होती हैं, तो कौन व्यक्ति ज्यादा सुखी है? आपको कहेंगे जो गिल्ली डंडा खेल रहा है वो तो बड़े आनंद में है, सुखी है, और वो तो बेचारा स्कूल में टीचर के झापड़ खा रहा है, फटकार खा रहा है, दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है, एग्जाम की चिंता लगी रहती है, कहाँ का सुख? नहीं, उनके माता पिता जानते हैं कि बच्चे के भविष्य के लिए ये अच्छा है। तो इसी तरह सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को बधाई दे रहे थे कि आपने अपने भविष्य की खूब सोची, यदि आपने अपना मनुष्य जीवन यूं ही गंवा दिया और भविष्य विषय में नहीं सोचा होता तो आप मूर्ख कहलाते। इसीलिए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वरियान एशते प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। कई बार किसी से प्रश्न किया जाता है, विशेषकर किसी नेता वगैरह से, उसका उत्तर नहीं आता तो सबसे पहले कहते हैं बहुत बढ़िया प्रश्न, वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन सुखदेव गोस्वामी इसीलिए नहीं कह रहे थे कि उनको उत्तर नहीं आता था, अपने हृदय के अंतःकरण से वो अपनी मनोभावना को व्यक्त कर रहे थे कि आप अपने जीवन के भविष्य में जानना चाहते हो, मृत्यु पर्यंत क्या होगा, उसके सफलता का प्रयास कर रहे हो, बहुत बढ़िया। वरियान, ये उत्तम प्रश्न आपने किए हैं। नहीं तो देखा जाए सुबह से शाम तक लोग बस प्रश्न और उत्तरों में ही उलझे हुए हैं। किसी भी व्यक्ति को देखा जाए अपने जीवन में बस दो ही काम कर रहा है सुबह से लेकर रात तक, प्रश्न करना और उत्तर देना। सुबह उठते ही साथ सबसे पहले प्रश्न होता है कि आज की ताजा खबर क्या है, तो न्यूज़पेपर लेते हैं, उसका उत्तर पाते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि आज मैं दिन में क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, कहां पर जाऊंगा, किसके साथ मीटिंग करूंगा। इस तरह प्रश्न हर क्षण में उठते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर देते देते हमारा पूरा दिन निकल जाता है। इस तरह पूरा जीवन हमारा निकल जाता है केवल प्रश्न और उत्तर में उलझे हुए। लेकिन जीवन के अंत में क्या मिलता है? कुछ नहीं। एक बार एक राजा थे और वो राजा अपनी ऐश्वर्य से बहुत अधिक आसक्त थे और काफी गर्व भी था कि मैं इतना बड़ा राजा हूं। तो उन पर कृपा करके एक दिन एक साधु वहां पर पहुंचे। राजा के चेहरे पर इतना गर्व देखकर साधु ने कहा कि मुझे इन पर कुछ कृपा करनी चाहिए। राजा ने साधु की बहुत सेवा की, कहा कि महान संत आए हैं, इनका सत्कार वगैरह करें तो आशीर्वाद देंगे, तो सत्कार करने लगे। लेकिन साधु बिल्कुल गंभीर चेहरे के साथ बैठे थे, बहुत प्रसन्न करने का प्रयास किया लेकिन साधु के चेहरे पर एक तनिक मुस्कान भी नहीं। तो ये देखकर राजा गंभीर हो गए। राजा पूछने लगे साधु जी को, देखिए आपकी मैं इतनी सेवा कर रहा हूं लेकिन आप बहुत दुखी लग रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, आप दुखी क्यों हैं? साधु ने कहा, क्या बताऊं राजन, भगवान की कृपा से मैं लोगों के भविष्य को देख पाता हूं और मुझे तुम्हारा भविष्य दिख रहा है। राजा ने कहा, क्या है मेरा भविष्य? साधु ने कहा, मैं देख रहा हूं कि अति शीघ्र आपकी मृत्यु होने वाली है। राजा ने कहा, अरे क्या कहते हो, राजा बहुत गंभीर हो गया और वो साधु से कहने लगे, क्या आप सच कह रहे हो? साधु ने कहा, हाँ, मुझे तुम्हारी मृत्यु दिखती है, लेकिन एक विशेष बात है। वो क्या? मृत्यु के पश्चात तुम स्वर्ग लोक में जाओगे। तो राजा ये सुन के प्रसन्न हुआ, चलो यहां से अच्छी स्थिति तो मिलेगी, स्वर्ग लोक में जाकर आनंद करूंगा। तभी साधु ने कहा, लेकिन एक और समस्या है। साधु ने कहा, राजा ने कहा, क्या समस्या है? साधु ने बताया, स्वर्ग लोक में भोग के साधन तो होंगे, लेकिन वहां पर बड़े बड़े मच्छर होंगे। राजा घबरा गया, बोले, क्या बात करते हो, मच्छर होंगे तो मेरी नींद का क्या होगा? साधु ने कहा, लेकिन एक और उपाय है, वहां मच्छरदानी भी मिलेगी। साधु ने कहा, वाह, फिर तो मैं निश्चिंत सो सकता हूं। साधु ने कहा, लेकिन एक और समस्या है कि मच्छरदानी में एक बहुत बड़ा गड्ढा होगा, एक बहुत बड़ा छेद होगा। तो राजा ने कहा, अरे तो मैं क्या करूं? साधु ने कहा, लेकिन एक और उपाय किया जा सकता है कि उस छेद को सील दिया जाए। राजा ने कहा, अरे आप तो सचमुच साधु हो, हर समस्या का समाधान आपके पास है। लेकिन साधु ने कहा, लेकिन एक और समस्या यह है कि स्वर्ग लोक में सुई भी नहीं और धागा भी नहीं, तो क्या करेंगे? तो राजा बड़े परेशान हो गए। राजा ने साधु को पूछा, जरा आप कुछ उपाय बताइए ना। साधु ने कहा, मुझे थोड़ी जाना है, जाना तो तुमको है, तुम सोचो। तो राजा बेचारा सोचने लगा और उसने कहा, अरे स्वामी जी, एक उपाय मिला है। बोला, क्या? मैं जब यहां से वहां जाऊं तो अपने साथ एक सुई धागा लेके जाता हूं। साधु ने कहा, वाह, ये तो बहुत खूब बात की, अब जरा बताइए सुई धागा कैसे लेके जाएंगे। राजा फिर गहरी सोच में पड़ गया और बहुत देर सोचने के बाद बहुत मायूस होकर कहने लगा, स्वामी जी, ये तो मेरे लिए संभव नहीं, क्योंकि जब मैं इस शरीर को त्यागूंगा तो शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं यही रह जाएंगी। साधु ने कहा, बेटे, यही तो मैं कहना चाहता था कि मृत्यु के बाद आप अपने साथ न तो एक सुई लेके जा सकते हो, एक सुई छोटी सी होती है, सुई कितनी छोटी होती है, मोबाइल फोन से भी छोटी, बहुत छोटी, इतनी सी, पेजर से भी छोटी, इतनी होती है, तो आप सुई भी नहीं लेके जा सकते और धागा भी नहीं लेके जा सकते, तो आप अपने इस भौतिक संपत्ति और ऐश्वर्य से इतने आसक्त क्यों हो? तो राजा समझ गया। तो इस तरह सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बधाई इसलिए दी कि परीक्षित महाराज इतने शक्तिशाली और ऐश्वर्यशाली होने के बाद भी जीवन के अंत में उन्होंने भगवान की शरण लेने का निश्चय किया। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज ने उनको क्या आदेश दिया? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेतता अभयम्, कि जब भी मौका मिले आप भगवान के हरिनाम का कीर्तन करो और भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। तो बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। बोलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा। नयन पथ गामी भवतु मे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे।
तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज से कहते हैं, प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्त गुणसेधत नैर्गुण्य स्थरमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। हे परीक्षित महाराज, श्रीमद् भागवत के ज्ञान को प्राप्त करने से पहले मैं एक आत्माराम पुरुष था। मैंने प्रकृति के तीन गुणों से मुक्ति प्राप्त कर ली थी और मैं मुक्ति के स्तर पर स्थित था, क्योंकि ये ज्ञान जो आपको बताया जा रहा है ये ऐसा ज्ञान है निवृत्ति गुणसेधत, उन लोगों के द्वारा बहुत अच्छी प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है जो गुणों के प्रभाव से मुक्त हैं। ऐसे व्यक्ति श्रीमद् भागवत के अंदर प्रवेश हो सकते हैं। नैर्गुण्यस्थ रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। मैं नैर्गुण्य की स्थिति में था लेकिन फिर भी गुणानुकथने हरे, हरि कथा में मेरी रुचि जागृत हो गई। वैसे सुखदेव गोस्वामी महाराज राधा रानी के तोते हैं, शुक। एक बार कैलाश पर्वत पर शिवजी पार्वती जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे और सुखदेव गोस्वामी पेड़ के ऊपर बैठे थे। शिवजी के जितने भी संगी थे वो सब यहां वहां बिखर गए थे, आसपास कोई नहीं था। शिवजी चाहते थे कि केवल सही पात्र ही इसे ग्रहण करे, पार्वती जी को उन्होंने सुनाना आरंभ किया, लेकिन कथा सुनते सुनते पार्वती जी सो गईं। सुखदेव गोस्वामी जो ऊपर तोते के रूप में बैठे थे वो कथा ध्यान से सुन रहे थे। हर स्कंद के बाद शिवजी पूछ रहे थे, क्या कथा सुन रही हो? अब पार्वती जी तो सो रही थी, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो तोते के रूप में थे ऊपर बैठकर कह रहे थे हाँ हाँ तो शिवजी को लगा कि पार्वती जी बड़े ध्यान पूर्वक सुन रही है। और देखते ही देखते सारे 12 स्कंद संपूर्ण हुए। अचानक पार्वती जी की झपकी खुली और वो कहने लगी कि अरे दशम स्कंद हो गया, कमाल करती हो, 12वां स्कंद हो गया और आप कहती हो दशम स्कंद हो गया। पार्वती जी ने कहा अरे मैं तो 5वें स्कंद में ही सो गई थी, तो ये नींद की समस्या काफी पुरानी है, लेकिन हमें इससे प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ऊपर एक तोते के रूप में बैठे थे, तो शिवजी जांच पड़ताल करने लगे कि आवाजें कहां से आ रही थी। ऊपर देखा तो शुक को देखा। शिवजी बड़े क्रोधित हुए। शिवजी जब क्रोधित होते हैं तो वो साधारण क्रोध नहीं होता, क्योंकि उनके क्रोध से तो तीनों लोकों का नाश होता है। शिवजी ने कहा मेरी अनुमति के बगैर तुमने क्यों इस भागवत का कथन किया, श्रवण किया? तो सुखदेव जी ने कहा कि ये कथा तो सबके लिए है, इसमें अनुमति की क्या आवश्यकता है। शिवजी क्रोधित हुए और सुखदेव को मारने के लिए भागे। शुक तोते वहां से उड़ते 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 यहां वहां घूमकर अंततः बद्री का आश्रम में पहुंचे, जहां व्यास देव की पत्नी उनके आश्रम में बैठकर जमहाई ले रही थी। उनका मुंह खुला था, सुखदेव सीधा उनके मुंह के अंदर चले गए और सीधा पेट में जाकर शरण ले ली। शिव जी भागे भागे बड़े क्रोधावेश में आए। व्यास देव जी को पूछा किसी तोते वोते को देखा है? व्यास देव जी ने कहा हाँ बिल्कुल देखा है। कहाँ है? मेरे पत्नी के पेट में। तो शिव जी बड़े क्रोधित हुए, लेकिन व्यास देव जी ने कहा देखो आप मेरी पत्नी को तो अभी नहीं मार सकते, उसने तो अंदर शरण ली है। तो शिव जी बड़े क्रोधावेश में चिल्लाने लगे बाहर निकलो बाहर निकलो। व्यास देव जी ने उनको समझाया देखो शिव जी आप तो भागवत की महात्म्य को भली भांति समझते हो, अब आप ही बताइए श्रीमद् भागवत किसी ने ध्यान पूर्वक सुनी हो तो उसका क्या हाल होता है? शिव जी ने कहा वो तो अमर हो जाता है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी को आप मार कैसे सकते हो? वो तो अमर हो गया क्योंकि उसने भागवत सुनी। शिव जी को ये बात अच्छी लगी, कहा ये बात तो सही है, मैं क्यों इसके पीछे लगा हूं। तो शिव जी वहां से चले गए। उसके पश्चात व्यास देव जी सुखदेव जी से कहने लगे कि अब आप बाहर आइए, लेकिन सुखदेव जी ने कहा माया बड़ी प्रबल है। व्यास देव जी ने कहा कहने का तात्पर्य क्या है, आप जीवन पर्यंत अंदर रहोगे? उसने कहा नहीं, माया बहुत प्रबल है, बाहर आऊंगा तो माया के वश में आ जाऊंगा। व्यास देव जी बड़े परेशान हो गए, ये तो बहुत ही भयंकर बच्चा निकला हमारा। बच्चे तो जन्म के बाद परेशान करते हैं, लेकिन ये बच्चा तो माँ के गर्भ में ही परेशानी आरंभ कर रहा है। और व्यास देव जी ने सोचा विचारा और अंततः थक गए हार गए, भागे भागे द्वारका में गए कृष्ण के पास और भगवान श्री कृष्ण को बुला लाए। किस लिए? सुखदेव जी की डिलीवरी के लिए। कि सोचिए इतने महान संत हैं कि उनकी डिलीवरी के लिए स्वयं भगवान कृष्ण को द्वारका से आना पड़ा। यदि कृष्ण किस पर इस तरह कृपालु होते हैं तो वे व्यक्ति भागवत नहीं सुनाएगा तो क्या सुनाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए और कृष्ण ने सुखदेव जी को आश्वासन दिया, देखो सुखदेव मायाध्यक्षेन प्रकृति दैवीयेश गुणमयी मम माया दुरत्या, जो प्रकृति है माया है वो मेरे अधीन है, आप चिंता मत करो, बाहर आ जाओ, मैं आपकी रक्षा करूंगा, ये गारंटी देता हूं। तो भगवान कृष्ण की गारंटी पर सुखदेव गोस्वामी ने निश्चय किया कि अब मैं बाहर निकलूंगा। तो ऐसे व्यक्ति थे जो माँ के गर्भ से ही तीनों गुणों से परे थे, माँ के गर्भ में ही ये विचार कर रहे थे कि माया क्या है और माया क्या नहीं है। तो इस तरह सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, जहां तक मुक्ति का प्रश्न उठता है, मैं तो पहले ही मुक्त था, पहले ही मुक्त थे तो भागवत लिखने की इतनी कष्ट क्यों की, भागवत समझने का इतना कष्ट क्यों किया, इसके पीछे कारण है। परिनिष्ठितो नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यातम तान अधीतवान। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, वो कारण ऐसा है, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य, मैं मुक्ति के चरम सीमा तक पहुंच चुका था, लेकिन उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता, भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं ने मेरे मन को इस तरह आकृष्ट किया कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका। गृहीत चेता राजर्षे, हे परीक्षित महाराज, मैं अब आपको क्या बताऊं? आपको लगता होगा कि मुक्त पुरुष इस तरह श्रीमद् भागवत का गहन अध्ययन क्यों करना चाहेगा? वो इसीलिए कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का किसी व्यक्ति ने एक बार भी श्रवण कर लिया ध्यान पूर्वक, तो फिर उसके प्रति उसका आकर्षण हो जाता है। न चाहते हुए भी मैं उनके प्रति आकर्षित हो गया। गृहीत चेता राजर्षे आख्या हम तान अधीतवान, और इसीलिए मैं